Hereye koş. Hereye koş. Hereye koş. कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवर गोपीजन वल्लभा यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तेरा वन चारे यमुना जमुना तिरावन चारे राधा माधव कुंज बिहारे राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Yeah. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तरिषत् श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका स्वागत है इस दूसरे दिवस में भगवान श्री कृष्ण की कथा उखल बंधन लीला या दामोदर लीला इसको कहने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक विषय ये अपनी शक्ति पर प्रकट नहीं किए जा सकते। आध्यात्मिक विषय प्रकट होते हैं आचार्यों की गुरु की और भक्तों की कृपा से। जब तक हम सब के ऊपर गुरु की कृपा ना हो शुद्ध भक्तों की कृपा ना हो भगवान के विषयों को समझना कठिन है। अगर कोई भगवान पर आरोप लगाता है कोई धर्म के विरुद्ध बात करता है तो उस बात में हमें बड़ी जल्दी आनंद आता है, लेकिन जब भगवान का विषय होता है वो हम समझ नहीं पाते क्योंकि भक्तों की कृपा नहीं है। सारे शास्त्र ये भक्तों की कृपा से ही हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। ऐसा कहा गया है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येत कथितं हि अर्थं प्रकाशन्ते महात्मनः। ये जो शास्त्रों का अर्थ है ये किस व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है कौन व्यक्ति इसको समझ सकता है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। वो व्यक्ति जिसने जैसे भगवान की पूजा की, जिस हरे कृष्ण जिस भाव में जिस आदर से वो भगवान की पूजा करता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसी भक्ति वो भगवान की करता है वैसी ही भक्ति वो गुरु की करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु को भगवान माने। हमें बड़े सावधान रहना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। शास्त्रों के आधार पर ये बहुत स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता। भगवान का भक्त बना जा सकता है, गुरु बना जा सकता है, भगवान का प्रतिनिधि बना जा सकता है, भगवान नहीं। इसीलिए गुरु ये भगवान नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के संपर्क में हैं, भगवान के निकट हैं, भगवान ने उनको सेवा दी है, भगवान की कृपा उनको मिली है, इसीलिए उनकी भी भक्ति उनका भी आदर भगवान के समान होता। लेकिन ये जानते हुए कि वो भगवान नहीं है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर कुछ व्यक्तियों को भगवान मान लिया जाता, चाहे उनके चमत्कार के द्वारा हो या फिर कोई शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा हो या फिर उनके अनुयायियों को देखकर हो। ऐसे कई स्थान हैं। किसी को लोग भगवान का अवतार, किसी को कृष्ण का अवतार, किसी को देवी का अवतार। भक्ति भावुकता से नहीं होती है, भक्ति विश्वास से होती है। ये भावुकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को भगवान कह देता है, हम भी वहीं चले जाते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं, ये भावुकता है। और भावुकता ज्यादा समय नहीं रहती। हमें किसी को भगवान मानना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, सच्चा ज्ञान जो शास्त्रों में है, ऐसा ज्ञान जो भक्तों के हृदय से प्रकट होता है। महाभारत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तर्को प्रतिष्ठा ऋषयो श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम। महाभारत कहता है कि बहुत सारे ऋषियों के मत हैं जो अपने अपने तर्क देते हैं। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा कुछ चीज प्रतिष्ठित नहीं होती। श्रुतयो विभिन्ना, वेदों में कई अलग अलग बातें कही गई हैं। इसीलिए कई ऐसे लोग जो धर्म के विरोधी हैं, वेदों की शास्त्रों की ऐसी बातों को लेकर जो लोगों को समझ नहीं आती, गलत धर्म का प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म में सब कुछ अनुमति है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति पूजा को मना किया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में मांस खाने की अनुमति दी गई है। ये धर्म को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना है, श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, क्योंकि शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते हैं। शास्त्र समझ में आते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम। एक ऋषि का मत दूसरे ऋषि से नहीं मिलता। वो अपने साक्षात्कार के अनुसार जहां तक उसने धर्म को समझा है वो शास्त्र प्रकट करता है। और इसीलिए ज्ञान का मार्ग क्या है, शास्त्र कैसे समझने चाहिए। नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय। महाभारत महाभारत कहता है कि धर्म के जो तत्व हैं, तत्व अर्थात धर्म का सार, धर्म को कैसे समझना है, क्या धर्म है। कुछ लोगों के लिए धर्म दूसरों को मारना है। वे कहते हैं कि ये हमारे लिए पूजा है, हम अपने भगवान की पूजा दूसरों को मार कर करते हैं, ये धर्म नहीं है। कोई धर्म घृणा करना, द्वेष करना, हत्या करना नहीं सिखलाता। हर धर्म प्रेम करना सिखलाता। हम लोग अपने आप को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। कोई हिंदू कहलाता है, कोई मुस्लिम कहलाता है, कोई ईसाई कहलाता है, कोई किसी और धर्म का कहलाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग अपने आप को पहले मनुष्य कहलाना नहीं चाहते। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग अपने आप को जानना नहीं चाहते। वे हैं कौन? क्या हम हिंदू हैं? क्या मुसलमान हैं? सिख हैं? ईसाई हैं? कौन हैं हम? अगर हम इस धर्म के हैं तो क्या यही धर्म मृत्यु के बाद भी हमारे साथ बना रहेगा? क्या भगवान ने इस धर्म की रचना की है? क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम शरीरों के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर बट जाएं? अगर भगवान ये चाहते तो कभी भगवत गीता में ये नहीं कहते, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान ये नहीं कहते कि जितने भी जीव है इस जगत में उन सब का मैं पिता हूं। ये घोषणा की है भगवान ने। और अगर भगवान चाहते कि हम रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, तथा कथित धर्म के आधार पर अपने आप को बांट लें, एक नहीं रहें, तो कभी ये बात नहीं कहते। भगवान ये बात कहते हैं हमें ये समझाने के लिए कि धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म विभाजित नहीं करता, धर्म हमें बांटता नहीं है। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म ये समझना है कि भगवान एक है। हम उन्हें कई नामों से पुकार सकते हैं, उससे भगवान नहीं बदलते। केवल हमारा संबोधन बदलता है। भगवान एक है और उन एक भगवान के हम सब संतानें हैं। किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी देश के हो, किसी भी रंग के हो, हम सब का धर्म एक है, भगवान की सेवा। जीव इस जगत में जब आनंद पाने का प्रयास करता है, संतुष्टि पाने का, हम सब प्रयास करते हैं, लेकिन संतुष्टि मिलती नहीं है। हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम पूर्ण की सेवा नहीं करते, पूर्ण अर्थात वो शक्ति, वो व्यक्ति जिससे हम अंश के रूप में आए हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जगत में जितने भी जीव हैं जो कष्ट पा रहे हैं, कर्षति, संघर्ष कर रहे हैं, हम सबका संघर्ष है इस जगत में। किसी को रोटी के लिए संघर्ष है तो किसी को मकान के लिए संघर्ष है, किसी को धन के लिए संघर्ष है तो किसी को मान के लिए संघर्ष है, किसी को जीवन में सुख पाने के लिए संघर्ष है तो किसी को संतुष्टि के लिए संघर्ष है। भगवान कहते हैं हर जीव संघर्ष कर रहा है। और क्यों कर रहा है? कर्षति, ये संघर्ष क्यों है? क्योंकि वो एक बात भूल गया है, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि हम सब सनातन हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है और हम सब भगवान के अंश हैं। और अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा। हम सब सेवा करना चाहते हैं, माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, कोई व्यक्ति समाज की सेवा करता है, कोई राष्ट्र की सेवा करता है, कहीं ना कहीं सेवा करना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस जगत में जो सेवा नहीं कर रहा, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है फिर भी संतुष्ट नहीं है। एक ही कारण है, सेवा सही जगह पे नहीं है, सेवा संतुष्टि के स्रोत में नहीं है, सेवा आनंद के स्रोत में नहीं है और इसीलिए दुख है, असंतुष्टि है। उद्देश्य है जीवन का कि हम भगवान की सेवा करें, किसी न किसी तरह भगवान से जुड़े। और भगवान से जुड़ने का एक सरल मार्ग है उनकी लीलाओं का श्रवण। वो लीलाएं जो भक्तों के मुख से आती हैं, इसीलिए महाभारत का वो श्लोक अंत में कहता है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। धर्म के जो तत्व है, धर्म का जो सार है, सच्चा जो धर्म है, वो एक गुफा में छुप गया है, गुहाय। और वो गुफा क्या है? महाजनो येन गतः सपन्था। वो गुफा है भक्तों का हृदय। शुद्ध हृदय से निकली हुई वाणी हमारे हृदय को शुद्ध कर सकती है, शुद्ध हृदय से निकले हुए निर्देश हमारे बंधनों को काट सकते हैं, शुद्ध हृदय से निकले हुए उपदेश हमारी ऐसी सारी वासनाओं को, इच्छाओं को नाश कर सकती है जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। इसीलिए भक्ति का जीवन प्रारंभ होता है भक्तों की कृपा से, और आज हम उसी का वर्णन करने वाले हैं कि कैसे भक्ति प्रारंभ होती है, कैसे भक्ति की पूर्णता होती है। भक्त की कृपा के बिना ये नहीं होता। कल हमने सुना यशोदा ने बड़ा प्रयास करके कृष्ण को बांधने के लिए पकड़ लिया, वो कृष्ण जो बड़े बड़े योगियों की पकड़ में नहीं आते, पकड़ेंगे कैसे उनको? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये वो कृष्ण हैं जिनका ना अंतर है ना बहिर है, इनको नापा नहीं जा सकता। हमारे शरीरों का अंतर है बाहिर है, हमारे शरीर के अंदर कुछ है बाहर कुछ है, कृष्ण के शरीर में क्या है? वो तो ये हड्डी, ये मांस और रक्त का नहीं बना है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद मतलब सत चित और आनंद से परिपूर्ण, शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा शरीर जो इस हड्डी मांस का नहीं बना, खून ये गंदगी का नहीं बना, हमारा शरीर क्या है? गंदगी से भरा हुआ एक थैला है बस। इसके अंदर क्या है? खून है, हड्डियां हैं, वात पित्त इत्यादि है। कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे शरीर को कहां बांधेंगी, कहां पकड़ेंगी? बड़े बड़े योगी नहीं समझ पाते, अनंत हैं, भगवान का एक नाम है अनंत। अनंत मतलब जिनका अंत नहीं है। तो ऐसे भगवान को यशोदा ने पकड़ लिया, कैसे? प्रेम से। कल हम लोग दामोदर अष्टकम गा रहे थे और उसके एक श्लोक में वर्णन है कि केवल प्रेमा भक्ति से भगवान जीते जा सकते हैं। भगवान का नाम है अजीत। अजीत मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वो अजीत भी हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं भक्तों के प्रेम के द्वारा। और यही इस दामोदर लीला में हम देखते हैं। तो यशोदा ने पकड़ लिया है भगवान को, बांधने का प्रयास कर रही है, कल हम सुन चुके हैं। और जब बांधने का प्रयास किया, दो उंगली छोटी। ऐसा नहीं था कि बहुत छोटी रस्सी लाई थी, यशोदा बहुत रस्सियां ले आई थी, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, यशोदा ये नहीं सोच रही है कि रस्सी क्यों छोटी पड़ रही है, यशोदा ये सोच रही है कि मुझे इसे बांधना ही है, मैं इसको बांध कर रहूंगी, पसीने आ रहे हैं, थक गई है यशोदा। लेकिन यशोदा के मन में आज बड़ा प्रण है, नहीं तो आश्चर्य की बात होती ना, यशोदा ये सोचती कि अरे एक रस्सी छोटी पड़ी, मैंने दूसरे को बांधा, दूसरी छोटी पड़ी, और रस्सियां लगा दी, वो भी छोटी पड़ रही हैं, और उतनी ही दो उंगल छोटी। तो क्यों यशोदा के मन में ये विचार नहीं आया कि ये कोई जादू है, कोई चमत्कार है, ये क्या हो रहा है, कोई असुर आ गया, ये क्या हुआ? यशोदा के मन में कोई विचार नहीं आया, एक ही विचार था, कृष्ण को बांधना है। हम सब के लिए बहुत सुंदर संदेश है इसमें। यशोदा कृष्ण को बांध पाई क्योंकि एक ही विचार था, कृष्ण को बांधना। हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे मन में एक ही विचार हो, कृष्ण को पाना है। यशोदा ने प्रयास किया। आचार्य समझाते हैं कि जब यशोदा के प्रयास को देख लिया श्री कृष्ण ने, बहुत थक गई है, बड़ी देर से प्रयास कर लिया, बड़ी रस्सियां बांध ली, तो कृष्ण ने कहा ठीक है मैं बंध जाता हूं। अपनी कृपा से वो बंधते हैं। कृष्ण की सारी शक्तियों में से, सारे ऐश्वर्यों में से उनका सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है कृपा। यह कहना चाहिए कि कृष्ण बने ही कृपा से हैं, उनके पास कुछ और है ही नहीं देने के लिए। भगवान तो केवल कृपा दे सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जो होता है वही तो वो देगा। कोई व्यक्ति क्रोध देता है, कोई आतंक देता है, कोई मृत्यु देता है, लेकिन श्री कृष्ण केवल कृपा देते हैं, बने ही कृपा से हैं। उनका सारा अस्तित्व कृपा का है, और सारी शक्तियों में से, सारे ऐश्वर्यों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सारे ऐश्वर्यों का आधार कृपा है। जब भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो जाती है, तब फिर कोई शक्ति उनकी कार्य नहीं करती। वो शक्तियां जिन्होंने अब तक कृष्ण को बंधने से रोका हुआ था, भगवान की ही शक्तियां कृपा शक्ति के सामने परास्त हो गई। भगवान के हृदय में कृपा आई कि मुझे बंधना है। अब यशोदा ने बहुत प्रयास कर लिया और कृष्ण बंध गए। अचानक वो जो दो उंगली कम थी बंध गए, गांठ लगा दी, ठीक से बांध दिया यशोदा ने। आचार्य समझाते हैं कि ये जो दो उंगलियां हैं, ये दो प्रयास और कृपा की सूचक हैं। दो ही उंगली कम थी, अर्थात प्रयास और कृपा। यशोदा ने प्रयास किया और भगवान की कृपा आई, ये दो उंगलियां सूचित करती हैं। इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान को पाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, दो उंगलियों की आवश्यकता है, प्रयास और कृपा। कभी कभी लोगों से कहा जाए कि आप मंदिर आइए, तो वो कहते हैं जब भगवान की कृपा होगी तब आएंगे। आप भगवान का नाम लीजिए तो भगवान की जब कृपा होगी तब करेंगे, ऐसे लोग कहते हैं। तो भगवान की कृपा कब होगी? जब हम प्रयास करेंगे। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? तो इस दो उंगली को हमेशा याद रखिए जीवन में। प्रयास हमारा आवश्यक है, कृपा भगवान देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, कितनी देंगे, ये कृष्ण जाने। कृपा का कोई मापदंड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने इतने समय ये किया, कृपा देनी ही पड़ेगी भगवान को। कृपा शब्द का अर्थ ही यही होता है कि वो किसी मापदंड में ना हो, क्योंकि अगर कोई मापदंड हो जाए कि हाँ इतना करने से कृपा मिलती है तो वो न्याय हो जाएगा, वो कृपा नहीं है। ये दो शब्द हैं अलग अलग, न्याय और कृपा। न्याय किसी कर्मों के आधार पर किया जाता है, आपने ये कर्म किया आपको ये मिलेगा, ये न्याय है, ये कृपा नहीं है। लेकिन कृपा क्या है, आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपको सब कुछ मिलेगा, ये कृपा है। और ऐसी कृपा आती है केवल भक्तों की, भक्तों के संग में। तो यशोदा ने बांध दिया, दो उंगलियां छोटी थी, चौगलियां कम थी, रस्सी वो पूरी हो गई यशोदा का प्रयास और हमारी कृपा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर। तो भगवान ये बताना चाह रहे थे कि हम प्रयास निश्चित हमें करना चाहिए, तब कृपा भगवान की आएगी। तो ये नहीं कहना चाहिए मंदिर तब जाऊंगा, भक्ति तब करूंगा, नाम तब लूंगा जब भगवान की कृपा होगी। अरे भगवान की कृपा हुई है तभी तो कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि मंदिर आइए, पहचानिए उस कृपा को। नहीं तो क्या आवश्यकता है उस व्यक्ति को आपको आकर कहने की कि आप मंदिर आइए, आप भगवान का नाम लीजिए, आपके ऊपर कृपा हो गई है तभी तो कोई आकर कह रहा। भगवान की कृपा को समझना भी चाहिए। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई, पूरा पानी भर रहा था, सब लोग छोड़ छोड़ कर भागने लगे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो घर में पानी बढ़ने लगा, बहुत बढ़ गया तो छत पर चला गया, छत पर भी पानी बढ़ने लगा तो वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। इतने में कुछ लोग वहां से नाव में जा रहे थे, उन्होंने नाव बना ली, जल्दी जल्दी जा रहे थे, उसको बुलाया, आ जाओ जाएंगे। उसने कहा नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे, मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप जाइए, मुझे विश्वास है भगवान बचाएंगे। तो नाव चली गई, पानी और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, सरकार ने भेजा, रस्सी फेंकी नीचे, कहा चलो आ जाओ जितने लोग आ सकते आओ। उस व्यक्ति को भी कहा, उसने कहा नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, आप चले जाओ। हेलीकॉप्टर भी चला गया। तो ऐसे कई बार हुआ, किसी ने बुलाया नहीं सुना, अंत में पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मर गया ये। तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने इतना विश्वास दिखलाया भगवान पे। उसने जाकर पूछा ऊपर कि ऐसे कैसे, भगवान से पूछा कि मैं आपके ऊपर इतना विश्वास दिखला रहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे और आप आए नहीं बचाने के लिए। भगवान ने कहा मैं तो कई बार आया था, पहले मैंने बोट भेजी थी, तुमने मना कर दिया, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, वो भी तुमने मना कर दिया। तो भगवान तो कृपा करते हैं, हमें समझने में गलती हो जाती है। इसीलिए अगर कोई भक्त आपसे कहते हैं कि मंदिर आइए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो ये मत कहिए कि जब भगवान की कृपा होगी, या कभी कभी लोग कहते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तब आएंगे। तो क्यों भगवान आपके लिए इच्छा करेंगे, आपको खुद इच्छा करनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे ही प्रयास बहुत आवश्यक है भक्ति में, हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास हमारा होना चाहिए, फिर भगवान की कृपा निश्चित आएगी हमारे ऊपर। तो ऐसे यशोदा ने बांध दिया, अब कृष्ण बंद गए हैं पहली बार, सारे ब्रज के लोग आकर देख रहे हैं, अरे कृष्ण बंधे हुए हैं, पहली बार वो बंद गए थे। और देखिए वो कृष्ण जो मुक्ति प्रदाता है, श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदाता, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने आप को खोल नहीं पा रहे हैं। बांध दिया यशोदा ने तो खोल लेते, क्यों नहीं खोला, क्योंकि यशोदा ने बांधा था, इतनी हिम्मत नहीं थी कृष्ण में कि वो खोल लें। जानते थे कि अभी तो केवल बांधा है, अगर खोल दिया तो यशोदा से इतनी मार पड़ेगी कि बस। तो इसलिए बिल्कुल नहीं, जैसे बंधे थे वैसे बंधे रहे। ग्वाल बाल आ रहे थे, अन्य लोग आ रहे थे, बलराम जी आए, अब बलराम जी जैसे ही कृष्ण को देखते हैं कि कृष्ण बंधे हुए हैं, भूल जाते हैं सारी लीलाओं को। बलराम जी आप जानते हैं बड़े क्रोधित व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी क्रोध कर देते हैं। जब बलराम जी रामचंद्र जी के साथ आए लक्ष्मण के रूप में, छोटे भाई बनकर आए, वही कृष्ण राम बनकर आए, बलराम जी लक्ष्मण बनकर आए, तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जहां राम ने लक्ष्मण को रोक दिया, नहीं तुम ये नहीं करना, क्रोध नहीं करना। जैसे जब राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण एकदम क्रोध में आ गए और लक्ष्मण ने कहा क्रोध में आकर राम से, आप चिंता मत करो, आप बस इधर यहां एक तरफ खड़े रहो, मैं अभी इन सबको मार देता हूं। और ये राजा अपने ही पिता को कह रहे हैं दशरथ को, ये राजा ये स्त्री से आसक्त हो गया है, मैं तो इसको भी बंदी बना लूंगा, नहीं तो इसको मार दूंगा, और अगर ये अयोध्या वासियों ने विरोध किया तो मैं अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। भगवान राम ने कहा शांत हो जाओ, अयोध्या को जला दोगे तो मैं राज्य किस पर करूंगा, अयोध्या को जला देंगे। तो उन्होंने कहा शांत हो जाओ, तो शांत होना पड़ा वहां पर उनको। फिर और ऐसे कई जगहों पर हुआ बहुत क्रोध आया, जैसे जब अंत में भी रामचंद्र जी ने कहा सीता देवी आई तो रामचंद्र जी ने कहा मैं स्वीकार नहीं करता हूं इनको, इनको अग्नि परीक्षा देनी होगी, और अग्नि जलाने के लिए किसको कहा, लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाओ लकड़ियां लेकर आओ अग्नि जला। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बड़े भाई हैं, आदेश दिया। ऐसे कई बार हुआ जब सीता को छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा जाओ सीता को वन में छोड़ा। लक्ष्मण ने कहा सीता की क्या गलती है और सीता को वन में आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। रामचंद्र ने कहा बड़ा भाई कौन है, जाओ। तो लक्ष्मण ने प्रण लिया था कि अगली बार बड़ा भाई बनूंगा मैं, छोटा नहीं बनूंगा, छोटा बनने में सब कुछ सुनना पड़ता है बार बार, तो इसलिए अगली बार बलराम जी बनकर आए। तो अब बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा कि कृष्ण को बांध दिया, बहुत गुस्से में हो गए, भूल गए सब लीला लीला और एकदम अपने स्वरूप में आ गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे किसने बांधा है कृष्ण को, किसने बांधा है कृष्ण को। तो सारे ग्वाल वाल सोचने लगे इसको क्या हो गया आज, इतने जोर से चिल्ला रहे, अभी तक तो कभी नहीं चिल्लाए थे। दरअसल बलराम जी हैं कौन, बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार हैं। शास्त्रों में कहा गया है सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। बलराम जी कोई और नहीं है, भगवान ही है, लेकिन केवल उनका दूसरा रूप है। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। एक ही भगवान है, केवल एक अंतर है, भिन्न मात्र काया, केवल रंग अलग अलग है, कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो बलराम जी आए और कृष्ण को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे किसने बांधा है। तो जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा वो अंदर अंदर जाओ, पता चलेगा किसने बांधा। यशोदा अपने काम में व्यस्त हो गई थी बांधकर। तो बलराम जी पैर पटकते हुए जोर से अंदर आए, चिल्लाने लगे, यशोदा काम कर रही अचानक चिल्लाने लगे किसने बांधा है कृष्ण को। अब यशोदा ने कहा अरे इसको क्या हो गया आज, आज बहुत आवाज कर रहा है तेज। तो यशोदा ने कहा क्या बात है, किसने बांधा है कृष्ण को। मैंने बांधा है, जानती हो कौन है। तो यशोदा ने कहा कौन है। अरे भगवान है वो। यशोदा ने कहा अच्छा कृष्ण भगवान है। अरे हाँ भगवान है, तो तुम कौन हो। मैं भी भगवान हूं। ऐसे सच कह रहे थे, कोई गलत तो नहीं कह रहे थे, उस समय तो क्रोध में थे तो सच कह रहे थे वो। तो तुम कौन हो। मैं भी भगवान हूं। यशोदा ने छड़ी उठाई, बोले भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुमको भी बांध दूंगी। सारे भगवानों को मेरे ही घर में पैदा होना था क्या, सब इधर आ गए। और फिर बलराम जी को भागना पड़ा, फिर याद आ गया अरे ये क्या छड़ी मार देगी माँ। तो बलराम जी भी खोल नहीं पाए, गुस्सा जरूर किया, चिल्लाए जरूर, लेकिन खोला नहीं कृष्ण को। इतनी हिम्मत नहीं थी कि यशोदा ने बांधा है तो खोल दें। ये भक्तों का प्रेम है। भक्तों के प्रेम से कृष्ण बंध जाते हैं, कृष्ण समर्पण कर देते हैं। शास्त्रों में तो वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति केवल थोड़ा सा जल और तुलसी का दल भगवान को अर्पण करता है तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति के हाथ में। थोड़ा सा बस जितना जल इसके आपके अंजलि में आ जाए, ये शास्त्र का श्लोक है, तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलकेन वा, कि अगर हम थोड़ा सा जल और तुलसी दल, कुछ जरूरत नहीं है, भगवान हमसे कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहते हैं, भगवान को कोई कमी नहीं है, भगवान सरल चीज चाहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे भक्ति से चार चीजें अर्पण कर देता है, कोई भी चार, चार में से कोई भी एक चीज, पत्रम अर्थात पेड़ का पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, इतना तो कहीं भी मिलता है, तो भगवान कहते हैं बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे ये भक्ति से अर्पण करता है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो भगवान बहुत सरल भक्ति का मार्ग दे देते हैं हम सबके लिए। तो यशोदा लेकिन बंधते हैं, बिकते हैं उस व्यक्ति के हाथों जो उन्हें प्रेम करते हैं। प्रेम के सामने उनका कुछ नहीं चलता, कोई शक्ति नहीं चलती उनकी, जब भक्तों का प्रेम उदय होता कुछ भी करते हैं। महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, संत तुकाराम, जब वो यहां पर थे इस पृथ्वी पर, तो विठल जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, अपने भक्त के प्रेम वश उन्होंने, एक बहुत सुंदर लीला है कि उन्होंने तुकाराम जी की पत्नी, जो विठल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, कहना चाहिए गालियां देती थी विठल को, कि ये काले वाले ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, काला हमेशा मेरा पति मुझे छोड़कर वो उसके सामने जाकर बैठकर भजन गाता रहता है। तो ऐसी उनकी पत्नी को भी, जो भगवान को बहुत द्वेष करती थी, केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण उसके पांव में जो कांटा लगा, पत्नी के पांव में, उसको भगवान ने खुद आकर निकाला। ये बहुत सुंदर लीला है तुकाराम जी की, क्यों? क्योंकि मेरा भक्त भूखा नहीं रह जाए। उनकी पत्नी, तुकाराम जी की पत्नी लेकर जा रही थी रोटी खाने के लिए, ऊपर बैठे थे तुकाराम जी पर्वत पर, कीर्तन कर रहे थे भगवान के नाम का, और उसके पांव में कांटा लग गया, वो गिर गई, तो भगवान ने सोचा कि देर हो जाएगी, मेरा भक्त भूखा रहेगा, तो खुद आकर कांटा निकाला उन्होंने। हाँ, जब वो कांटा निकाल रहे थे तब भी इनकी पत्नी यही सोच रही थी, ये काला वाला यहां भी आ गया। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। तो भगवान कुछ भी करते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं। अब देखिए, सारथी बनना, ड्राइवर बनना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान है वो, अर्जुन के सारथी बनते हैं। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में, जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में श्री कृष्ण ने एक सेवा ली, जो भी ब्राह्मण आएंगे, जो भी भक्त आएंगे, उनके चरणों को धो रहे थे वो, ये उनकी सेवा थी। तो ये श्री कृष्ण है अपने भक्त के लिए। और जब ये दृश्य था, आप सोचिए क्या दृश्य होगा, स्वयं श्री कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के चरण धो रहे हैं, आइए स्वागत कर रहे हैं। और उस यज्ञ में ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि आए, और नारद मुनि उस यज्ञ में आकर कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि युधिष्ठिर महाराज, आप जानते हो आपके यज्ञ में इतने सारे ऋषि मुनि क्यों आए हैं, ब्रह्मांड से ऋषि मुनि? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ जानता हूं, कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, ये तुम्हारा दर्शन करने आए हैं, क्योंकि सारे ऋषि मुनि ब्रह्मांड भर के आश्चर्यचकित हैं कि कौन व्यक्ति है जिसके यज्ञ में कृष्ण चरणों को धो रहे हैं, कौन है ऐसा व्यक्ति? ऐसा होता है ना, कभी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है। जैसे एक बार बाहर के जगत में एक स्थान है जहां पर ईसाई धर्म के जो प्रमुख हैं, जिनको पोप कहा जाता है, वो रहते हैं वैटिकन सिटी। तो वो वहां पर रहते हैं और उस शहर में उस राज्य के राष्ट्रपति से भी बड़ा पद है उनका, पोप। तो वो सबसे बड़ा पद है। तो ऐसे ही एक किसी ने लिखा है थोड़े हंसी मजाक में कि एक बार वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, वो पीछे बैठे थे। अब ये जो पोप हैं, ये उस शहर में मतलब पूरी सत्ता उनकी, उनके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, तो तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठूं। तो वो पीछे बैठ गया और जो पोप थे, पोप मतलब जो ईसाई धर्म के प्रमुख है, वो गाड़ी चलाने लगे। और चलाते चलाते आदत नहीं थी, वो रेड लाइट क्रॉस कर गए, नियम तोड़ दिया उन्होंने। तो पुलिस वाले ने देखा और पुलिस वाले ने तुरंत उनको रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने देखा कि पोप गाड़ी चला रहे हैं। तो अब वो साथ साथ में गाड़ी चला रहा था, लेकिन कैसे रोके। तो उसने अपने ऑफिसर को फोन किया, बहुत बड़े ऑफिसर को, और उसने कहा कि सर एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़े व्यक्ति की कार ने सिग्नल तोड़ा है, अब मैं उसको दंड दूं या ना दूं, आप बताइए। तो उसने कहा कौन है बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति? बोले नहीं, उससे भी बड़ा। तो बोले प्रधानमंत्री? नहीं, उससे भी बड़ा। राष्ट्रपति? नहीं, उससे भी बड़ा। तुमने कहा पोप है क्या? बोले नहीं, उनसे भी बड़ा। मैं उनसे बड़ा कौन? बोले वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पोप उनकी गाड़ी चला रहे हैं, इतना मैं जानता हूं, तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। तो पोप जिनकी गाड़ी चला रहे, वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा। वो इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कि क्या करूं, इसको कुछ करें या ना करें। तो अर्जुन के लिए सारथी बन जाते हैं श्री कृष्ण, ये प्रेम है उनका। तो इसीलिए जब यशोदा ने छड़ी लेकर बलराम जी से कहा कि भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी बांध दूंगी, तो भाग गए वहां से। तो कृष्ण बंधे हुए थे, यशोदा फिर अपने काम में व्यस्त हो गई, और कृष्ण ने देखा कि आंगन में दो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, अर्जुन वृक्ष, बड़े बड़े, यमलार्जुन कहा गया। यमलार्जुन मतलब जो दोनों हैं, दो साथ में, तो दो ऐसे वृक्ष थे, ऐसे निकल रहे थे, बीच में थोड़ा सा स्थान था। तो कृष्ण ने देखा और कृष्ण को स्मरण आया कि ये जो दोनों वृक्ष हैं, ये पूर्व काल में मेरे भक्त कुबेर के पुत्र थे, और मेरे ही एक भक्त नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था, जिस कारण से ये अब पेड़ बन गए हैं। वैसे मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका संपर्क भक्त से आया था, नारद मुनि से हुआ था, इसीलिए मैं इनके ऊपर कृपा करना चाहता हूं। तो ये बहुत सुंदर लीला है, इसमें बहुत सारे उपदेश हैं हमारे लिए, इसको बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तो भगवान ने इन वृक्षों को देखा, उनकी ओर चले। तो इनका इतिहास क्या था? ये दो पुत्र थे जिनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव, और ये किसके पुत्र थे? कुबेर के। कुबेर जानते हैं कौन है? खजांची हैं, देवताओं के खजांची। कितना खजाना होगा उनका जो देवताओं को धन देते हैं। तिरुपति आप जब जाएंगे तो आप देखिए, बालाजी को लोन दिया हुआ उन्होंने, आपको तिरुपति की कथा पता होगी। तिरुपति में बालाजी क्यों खड़े हैं और क्यों इतना धन आता है तिरुपति में, उसका कारण क्या है? बालाजी ने अपनी शादी के लिए लोन लिया था। किसी और कारण के लिए लिया होता तो भी ठीक, शादी के लिए लोन ले लिया भगवान ने, तो वो लोन चुका रहे हैं अभी तक। तो लोन चुकाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। बालाजी की कथा कभी और कहेंगे, अभी अभी उसमें चले गए। तो बहुत 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 सुंदर लीलाएं हैं बालाजी की। तो कुबेर खजांची हैं और कुबेर के ये पुत्र थे। तो बहुत धन होने के कारण अहंकार हो गया उन्हें, हमारे पिता बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत धनवान हैं, हम बहुत धनवान हैं। तो धन का अहंकार हो गया। और साथ ही साथ ये शिष्य थे शिवजी के, तो शिवजी के शिष्य, अभी जो शिवजी का शिष्य होगा उसका तो कहना ही क्या है। शिवजी तो इतने महान व्यक्ति हैं, आज हम उनके ही आश्रय में यहाँ बैठे हुए हैं, उनके मंदिर में शिवजी के, और बड़े आभारी हैं कि शिवजी हमें हर वर्ष अवसर देते हैं कृष्ण कथा कहने का। वैसे शिवजी बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई श्री कृष्ण की कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री शिवजी ऐसे, वैसे शिवजी के पास अगर कोई कुछ मांगने जाता है, कुछ धन दे दीजिए, थोड़ी संपत्ति दे दीजिए, ज़्यादातर लोग शिवजी के पास मांगने ही आते हैं। मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की शादी नहीं हो रही, शिवजी अभी एक नारियल चढ़ा रहा हूँ, शादी के बाद 21 नारियल चढ़ाऊँगा, ये व्यापार करते हैं ना भगवान से, ये व्यापार करते हैं। लोग उसको मन्नत कह लेते हैं, मैंने मन्नत मांगी है क्या, अगर मेरा ये हो गया तब भगवान, अरे नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे। ये तो व्यापार है कि हम भगवान के पास आकर कहें इतना आप मेरे लिए करोगे तब मैं ये करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो शिव जी के पास तो बहुत लोग आते हैं, विशेष करके सोमवार को युवक भी बहुत आते हैं शिव जी से प्रार्थना करते, मेरी शादी करा दो कोई तो एक अच्छी सुंदर स्त्री, और युवतियां भी आती हैं, अच्छा पति दे दीजिए। अब बेचारे शिव जी को मैरिज ब्यूरो खोलना पड़ता है, किसका किससे विवाह कराए, बस शिव जी यही करें। शिव जी आशुतोष है, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए शिव जी अगर कोई कुछ मांगता है तो बहुत जल्दी दे देते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति करना चाहता है कृष्ण की भक्ति, तो वो खुद उसके पास चलकर जाते हैं। ये सब वर्णन भागवत में किया गया है कि भगवान आकर शिव जी कहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत श्रेष्ठ, तो शिव जी को भी आनंद आता है। दरअसल हम यहाँ पर आकर ये कथा शिव जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर रहे और हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें। तो शिव जी के शिष्य हैं, कुबेर के पुत्र हैं, और बड़े सुंदर हैं, देवता हैं तो सुंदर होंगे ही, तो उनको थोड़ा अहंकार हो गया। देखिए कथा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको भी ऐसा अहंकार होता है, धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, तो उनको थोड़ा अहंकार हो गया। और एक समय वे कैलाश में गए, कैलाश में मंदाकिनी बहती है, मंदाकिनी जानते हैं हम, गंगा, गंगा को ऊपर के लोकों में मंदाकिनी कहते हैं, इस लोक में भागीरथी या गंगा कहते हैं, और नीचे के लोकों में भोगवती कहते हैं। गंगा तीनों लोकों में बहती है। गंगा की भी बहुत सुंदर कथा है, गंगा कैसे आई, जब इस ब्रह्मांड में आई, अर्थात इस ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश किया, तो भगवान के चरणों को छूकर आई थी, इसलिए इनका एक नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी अर्थात जिन्होंने भगवान विष्णु के पद चरणों का स्पर्श करके इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया, इसीलिए कभी कभी गंगा को चरणामृत भी कहा जाता है। जब वामन देव ने अपना विस्तार कर लिया था, तो उनके जो नख थे उससे ब्रह्मांड में छेद हो गया, और उससे गंगा प्रकट हुई थी, भगवान के चरणों को धोते हुए प्रकट हुई थी। हाँ, इस पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई वो एक अलग कथा है, बहुत बड़ी कथा है, वो कभी और कहेंगे। तो गंगा थी वहां मंदाकिनी, कैलाश, सोचिए कैलाश कितना शुद्ध स्थान है, और उस स्थान में मंदाकिनी जो पवित्र करने वाली नदी है, उसमें ये नलकुवर और मणिग्रीव स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और नग्न थे। भागवत में इस अध्यायों में वर्णन किया कि नग्न थे, स्त्रियां भी नग्न, ये भी नग्न, आनंद ले रहे थे। वैसे एक नियम है कि पवित्र नदियों को ऐसे दूषित नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति का बड़ा प्रकोप सहन करना पड़ता। आप सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे पवित्र स्थानों पर कई आपदाएं आईं। इनका कारण एक ही है, हमने पवित्र स्थानों को दूषित कर दिया है, हम पवित्र स्थानों की महिमा को खो बैठे, हमने उन्हें एक पिकनिक का स्थान बना लिया है, घूमने जाने का स्थान, आनंद लेने का स्थान। कई वर्ष पहले हमने शायद आपको बताया होगा, कई कई वर्ष पहले हम हरिद्वार गए थे और हरिद्वार में एक स्थान है जिसे हर की पौड़ी कहते हैं और दोनों तरफ उसके गंगा बहती है, बीच में बनाया गया है वो लोगों के स्नान इत्यादि के लिए। हम इस तरफ थे, दूसरी तरफ हमने देखा कि एक व्यक्ति बैठे हुए है। तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, आप जानते हैं ये क्या हो रहा है? हमने कहा नहीं, बैठा है व्यक्ति और क्या। बोले आइए आपको दिखाते हैं, आप चलिए। तो हम लोग जाकर थोड़ा सा दूर उससे बैठ गए। बोले आप बस बैठे रहिए, देखिए क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने एक रस्सी नीचे डाली हुई थी गंगा में। गंगा का जल बहुत ठंडा होता है ऋषिकेश हरिद्वार में, बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि अगर गर्मी में आप प्रवेश कर जाएं तो सर घूम जाएगा, बर्फ की तरह ठंडा हो। तो इस व्यक्ति ने एक रस्सी डाली हुई थी और वो बैठे हुए थे बस आराम से, और थोड़ी देर बाद उसने रस्सी खींची तो इस व्यक्ति ने कहा अब देखिए। तो हमने क्या देखा, वो रस्सी ऊपर ली, उसमें एक छोटी सी बोरी का थैला बना हुआ था बोरी से, और उसके अंदर कुछ था। और फिर जब उसने निकाला तो जानते हैं क्या था उसके अंदर, उसके अंदर बियर की बॉटल थी। वो बियर की बॉटल गंगा में डालकर ठंडी कर रहा था पीने के लिए। बताइए, उसको और कोई स्थान नहीं मिला, ये नलकुवर मणिगिरी यही आज भी है इस जगत में। तो उस गंगा में जहां लोग पवित्र होने के लिए जाते हैं, गंगा की पूजा, हर की पौड़ी में सामने ही गंगा की पूजा होती, आरती होती है शाम के समय। तो जहां गंगा की पूजा की जाती है, गंगा को पवित्र माना जाता है, वहां ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बियर की बॉटल ठंडी करने के लिए गंगा का उपयोग करते हैं। ये तो हमने खुद देखा है प्रत्यक्ष अपने सामने। तो इसलिए जब हम ऐसे पवित्र स्थलों को दूषित करते हैं तो फिर आपदाएं आती हैं, उसको कोई रोक नहीं पाता। और फिर लोग कहते भगवान ने ऐसा क्यों किया। जैसे कुछ वर्ष पहले जब बद्रीनाथ केदारनाथ में इतना बड़ा उत्पात हुआ तो लोगों ने प्रश्न किए, भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने नहीं किया, ये तो आप लोगों ने किया। भगवान तो रक्षा करते हैं। तो इसीलिए नलकुवर और मणिगिरी आनंद ले रहे हैं, और ऐसे में अचानक नारद मुनि वहां पर आ जाते हैं। अब देखिए, यहां से बहुत सुंदर कथा प्रारंभ होती है कि भक्तों की कृपा, हमने प्रारंभ किया था आज का प्रवचन भक्तों की कृपा से। तो नारद मुनि आए, तो नारद मुनि जैसे ही आए, जो स्त्रियां थी वो तो शर्म के मारे इधर उधर चली गई, उन्होंने अपने तन को ढक लिया। लेकिन ये जो दो थे नलकुवर मणिगिरी, इन्होंने मदिरा पी रखी थी, मद में थे, नशे में थे, एक तो धन का नशा ऊपर से मदिरा का नशा, और उन्होंने देखा वो वैसे ही खड़े रहे, हिले भी नहीं। नारद मुनि आए, भक्त आए, इतने महान ऋषि आए, वो हिले भी नहीं। एक स्थान पर तो एक आचार्य टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दरअसल नलकुवर और मणिग्रीव ये सोच रहे थे मन में कि ये नारद मुनि को यहीं आना था, अभी इस समय कोई और रास्ता नहीं मिला जाने के लिए। तो नारद मुनि आए और नारद मुनि ने देखे इनकी ऐसे कार्य, ऐसे ही खड़े हैं, कोई वस्त्र नहीं शरीर पर, ऐसे ही नारद मुनि के सामने खड़े रहे। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनका ये जो अहंकार है इसको तोड़कर इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। देखिए, जो भक्त होते हैं वो हर समय कृपा करते हैं, उनका श्राप भी कृपा है, उनके वरदान तो कृपा है ही, लेकिन उनका श्राप भी, अगर कोई शुद्ध भक्त आपको श्राप भी दे दे तो धन्य मानना चाहिए अपने आप को। ये इस लीला में हम समझ सकते हैं क्यों धन्य मानना चाहिए, क्योंकि भक्तों के श्राप, भागवत के तीसरे स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है। एक श्लोक कहा उद्धव ने, आप सब उद्धव का नाम जानते होंगे। तो उद्धव से विदुर जी मिले, विदुर जी ने प्रश्न किया, विदुर जी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ, कितने लोग मर गए, युद्ध समाप्त हो गया, कृष्ण भी चले गए इस धराधाम को छोड़कर, कुछ नहीं पता था। तो उस समय उद्धव ने युद्ध का वर्णन किया, तथैव चान्य नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्य पूतः पद्मा पुरस्य। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग थे युद्ध में जो मारे गए वो सब वैकुंठ चले गए। तो बड़े आश्चर्य की बात है। अरे वो व्यक्ति जो विरोध कर रहे थे अर्जुन का, कृष्ण का तीर चला रहे थे, वो कैसे वैकुंठ चले गए? तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, पार्थस्य पूतः पद्मः पुरस्य, कि वे लोग सब मृत्यु के समय दरअसल कृष्ण के मुखारविंद को देख रहे थे। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामं पार्थस्य पूतः, तो नेत्रों से वो कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। दरअसल कहना चाहिए कि नेत्रों से कृष्ण को पी रहे थे, अमृत पी रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि मृत्यु के समय ऐसे व्यक्तियों को जो अधर्मी थे, पापी थे, भक्तों का विरोध कर रहे थे, धर्म का विरोध कर रहे थे, उनको भगवान के दर्शन हुए और वो वैकुंठ चले गए? भगवान के दर्शन तो सबको नहीं होते, विशेष करके अधर्मी व्यक्तियों को तो बिल्कुल नहीं होते। कैसे हो सकते हैं अधर्मी व्यक्तियों को? क्योंकि जो चीज हम जीवन भर करते हैं वही चीज मृत्यु के समय हमें याद आती है। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जीवन भर हम पाप करें और मृत्यु के समय हमें याद आए कृष्ण की, नहीं आएगी, वही पाप याद आएगा। इसलिए जीवन एक अभ्यास है, मृत्यु परीक्षा है। अगर अभ्यास अच्छा होगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, अगर अभ्यास अच्छा नहीं होगा तो परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं होंगे। कोई यह सोच सकता है कि ठीक है, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेंगे, अभी जीवन भर करने की क्या जरूरत है, क्यों समय बर्बाद करें? शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सतत हर समय कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर अभ्यास नहीं होगा तो मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, हजारों बिच्छू एक साथ अगर आपके शरीर को काटें, जितना कष्ट होगा उतना मृत्यु के समय होता है। ऐसे कष्ट में कृष्ण को याद करना संभव नहीं होता अगर हमने अभ्यास नहीं किया। इसीलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप यहां आए, इस 3 दिन के अनुष्ठान में आ रहे हैं, आज भी कल भी आएंगे, कुछ लेके जाइए यहां से। जीवन में बदलाव हो तब यहां आने का लाभ है। जीवन को बदलिए, कम से कम भगवान का नाम लेना प्रारंभ कीजिए, अभ्यास शुरू कीजिए। यही अभ्यास है जो मृत्यु में हमारी रक्षा करेगा, यही अभ्यास है जो मृत्यु के समय हमें कृष्ण का स्मरण दिलाएगा। केवल कोई भजन गा लेने से, कि एक भजन किसी ने लिखा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो कृष्ण आप आना, वो शब्द है उसके कि जब प्राण तन से निकले, है ना, आपने सुना होगा ये भजन है कि जब मेरे प्राण निकले तब आप मेरे सामने आना। कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण क्या उनका स्मरण भी नहीं आएगा अगर अभ्यास नहीं किया। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि अपने इस मनुष्य जीवन को आप व्यर्थ मत कीजिए। बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जीवन, इसको व्यर्थ मत कीजिए खाने पीने सोने इत्यादि में। ये तो ठीक है जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन इसके परे जो आत्मा की आवश्यकता है, भगवान का नाम, इसको लेना प्रारंभ कीजिए। हर रोज केवल 10 मिनट 15 मिनट जितना दे सकते हैं भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अभ्यास हमें चाहिए ताकि मृत्यु के समय हम कृष्ण का स्मरण कर सकें, और ये भक्तों की कृपा से होता। तो यहां नलकुबर और मणिग्रीव ये ऐसे ही खड़े रहे तो नारद मुनि ने सोचा इन पर कृपा करनी चाहिए। तो हम बतला रहे थे कि अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तो कैसे वो लोग जो विरोध कर रहे थे मृत्यु के समय भगवान को देख पाए और वैकुंठ चले गए। उसका कारण कहा गया, पार्थस्य पूतः पद्मः पुरस्य। जब पार्थ अर्थात एक शुद्ध भक्त अर्जुन, कृष्ण का सखा, जब वो तीर छोड़ रहा था तो उसके तीर जब उनके हृदय में जाकर लगते थे तो उन तीरों से उनका हृदय शुद्ध हो जाता था। तो आप सोचिए, अगर भक्त के द्वारा छोड़े गए तीर से हृदय शुद्ध हो सकता है तो अगर वो हमसे प्रेम करें, हमारे ऊपर कृपा करें, हमें उपदेश दें, निर्देश दें, तो उससे कितनी जल्दी श्रद्धा होगी। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको कुछ इनका अहंकार तोड़ना चाहिए। और नारद मुनि कहने लगे उस समय, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश नारद मुनि ने दिए। नारद मुनि ने कहा कि बाकी सारे ऐश्वर्यों में से धन एक ऐसा ऐश्वर्य है जिससे व्यक्ति बहुत जल्दी पाप में लगता है, क्योंकि जिसके पास धन है वो बाकी सारे पाप बड़ी सरलता से खरीद सकता है। जैसे जिसके पास धन है, नारद मुनि कहते हैं, वो प्राणियों को मारने में आनंद लेता है, अर्थात मांसाहार करता है। जिसके पास धन है वो शराब पीता है। शराब खरीदने के लिए पैसा चाहिए? एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है वो कहां से शराब पिएगा, कहां से मांस खाएगा? तो वो कहते हैं कि धन आने से बाकी सारे जो पाप के कार्य हैं वो व्यक्ति करने लगता है। इसीलिए धन ये बहुत जल्दी हमें पाप के मार्ग पर ले जाता है, अगर धन का सही उपयोग हमें नहीं पता है। धन होना ये कोई पाप नहीं है, लेकिन धन का दुरुपयोग पाप में लगाता। धन तो युधिष्ठिर महाराज के पास भी था, सारे पृथ्वी के सम्राट थे, तो उस समय उनके धन को उन्होंने सदुपयोग किया। इसीलिए हमारे पास जो है उसका हमें सदुपयोग करना सीखना है। और सच्चा उपयोग, असली उपयोग, हमारा शरीर इसका क्या उपयोग है, हमारे प्राण इसका क्या उपयोग है, हमारी बुद्धि इसका क्या उपयोग है, हमारी इंद्रियां इनका क्या उपयोग है, हमारा धन इनका क्या उपयोग है, ये हमें सीखना है। तो इसलिए धन होना कोई बुरी बात नहीं, नारद मुनि ये नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे कि उसके द्वारा सारे पाप पूर्ण कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो नारद मुनि ने वर्णन किया मांस खाने वालों का, नारद मुनि ने वर्णन किया शराब पीने वालों का, अवैध संग करने वालों का नारद मुनि ने वर्णन किया, और जुआ खेलने वालों का। तो नारद मुनि ने कहा ये चार चीजें, ये पाप में जीवन धन से प्रारंभ हो जाता है। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो चार चीजें हैं ये हमें मनुष्य स्तर से भी नीचे गिरा देती है। शराब पीना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना और मांसाहार करना, ये हमें मनुष्य स्तर से भी नीचे गिरा देता है। अगर हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो शास्त्र कहता है मानव को कम से कम ये चार, क्योंकि ये चार धर्म के स्तंभ हैं, ये चारों क्रियाएं चार स्तंभों को तोड़ देती हैं। सत्यता, शौच, क्षमा, इन सबको वो तोड़ देते हैं। शुद्धता, ये चार स्तंभ हैं धर्म के, और ये चारों कार्य इन धर्म के स्तंभों को तोड़ देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग शुद्ध जीवन जिए। किसी प्राणी को मारकर जीवन जीना केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, ये तो ठीक नहीं। भगवान ने सभी को जीने का अधिकार दिया है, और हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के जीवन ले लेने का। और वो भी किस लिए? केवल जिह्वा को 15 मिनट 20 मिनट स्वाद देने के लिए। तो इसलिए ऐसे कार्यों में हमें नहीं लिप्त होना चाहिए, जीवन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध जीवन से बल आता है, शुद्ध जीवन से संतुष्टि आती है, शुद्ध जीवन से भगवान आते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि हमारे जीवन में हम जप करें, भगवान का नाम लें और जीवन को शुद्ध करें। इन चार चीजों से बचें जिनसे धर्म का नाश होता। तो नारद मुनि ने कहा कि ये सब होता है, इसीलिए अब इनको मैं एक श्राप देता हूं, मैं इनको श्राप देता हूं। वैसे उन्होंने बहुत सारे और उपदेश दिए। नारद मुनि ने कहा कि व्यक्ति अपने शरीर से बड़ा आसक्त रहता है, भूल जाता है ये शरीर किसका है। नारद मुनि प्रश्न करते हैं, शरीर किसका है? क्या वो माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया, क्या उनका शरीर है? या फिर पुत्र का जो इसे अग्नि लगाता है? या फिर उन कुत्तों का, उन कीड़ों का जो इस शरीर को खाते हैं, क्या अग्नि का वो शरीर है? किसका है शरीर? माता पिता का है, स्वामी का है, जिसके आप काम करते हो उसका है, किसका शरीर है ये? नारद मुनि कहते हैं कि सब सारी भौतिक प्रकृति के गुणों के आधार पर होता है, इसलिए हमारा शरीर ये भौतिक प्रकृति की संपत्ति है, इसीलिए अंत में विलीन हो जाता है। जो पृथ्वी है वो पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में, आकाश आकाश में, वायु वायु में इत्यादि। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए कि हम लोग जिस शरीर से आसक्त हैं, शरीर है किसका? हम लोग कहते हैं हमारा है, तो हम कौन है? अगर शरीर हमारा है तो हम शरीर से अलग हैं, तो हम कौन है? इस प्रश्न को जरूर हमें चिंतन करना चाहिए। तो खैर, नारद मुनि ने कहा धन के कई उन्होंने बुरे प्रभाव दिए। वैसे चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में भी धन के कई दुरुपयोगों का वर्णन करते, धन के बुरे प्रभावों का। वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके बड़ा कोई दानी नहीं है उससे बड़ा। एक मजाक की दृष्टि में वो कह देते हैं, या एक उल्टी भाषा में वो कहते हैं, कृपणों समोदानी न भूतो न भविष्यति। कृपणों मतलब कंजूस, कृपणों समोदानी, कृपण के समान जो दानी है, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है और न कभी होगा। क्यों? अस्पर्शेन वित्तेन, वित्त यानी धन, अस्पर्शेन बिना स्पर्श किए, वो बिना स्पर्श किए धन को दूसरों में बांट देता है। इतना बड़ा दानी कौन हो सकता है? कैसे बांट देता है? क्योंकि जो कंजूस होता है वो बहुत समय अपने धन को बचा कर रखता है, खुद भी नहीं छूता, बचा बचा के रखता है, जब मर जाता है तो दूसरे ले जाते हैं उस धन को। तो चाणक्य पंडित कहते हैं इससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है कि अपने ही धन को स्पर्श भी नहीं करता लेकिन सारा धन दूसरों को बांट देता है। ऐसे हमें कृपण नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कंजूस होता है तो अपना ही नुकसान करता है। जैसे हम कई बार एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, बहुत धन था, एक रुपया खर्चा नहीं करता था। तो लोगों ने उसको कहा कि अरे इतना धन है, थोड़ा तो कम से कम रोटी में घी लगा के तो खाओ, सूखी रोटी खा रहे हो इतना धन हो के। तो बड़े भारी हृदय से, हृदय पर पत्थर रखकर वो एक घी का टिन लेकर आया, खोला नहीं उसको, लेकर आ गया। और फिर रोज गरम गरम जो चपाती होती थी उसको लेकर बाहर से ही टिन पर लगा देता था। इतना उसकी हिम्मत नहीं थी कि टिन खोल के घी निकाले, क्योंकि खत्म हो जाएगा घी, इसलिए बाहर से ही। ऐसे बड़े कंजूस होते हैं जो देना नहीं जानते हैं। हमें देना सीखना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति नाव में जा रहा था, बड़ा कंजूस था, सोच रहा था नाव से उतरते ही ये व्यक्ति ज्यादा पैसे मांगेगा तो मैं क्या करता हूँ, पहले से 25 पैसे निकाल के रखता हूँ। वो गांव में 25-50 पैसे आज भी चलते हैं, तो 25 पैसे 50 पैसे उसने कहा निकाल के रखता हूँ। तो जैसे ही निकाल रहा था नाव में, बीच में था नदी में, अचानक उसके हाथ से वो पैसा गिर गया। अब बड़ा कंजूस व्यक्ति था, 25 पैसा चला गया, मानो उसके प्राण निकल गए, कूद गया पानी में, बीच नदी में कूद गया 25 पैसे लेने के लिए। कूदने के समय भूल गया कि उसको स्विमिंग नहीं आती है, तैरना नहीं आता है, लेकिन 25 पैसे जा रहे हैं तो वो कूद गया। अब कूद तो गया, अब डूबने लगा, चिल्लाने लगा, हा हा हा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां पर जो व्यक्ति बैठे थे उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा दो, अपना हाथ दो, जल्दी हाथ दो। तो व्यक्ति डूब रहा है, हा हा, और हाथ दो। जैसे उसने कहा हाथ दो तो उसने दोनों हाथ पीछे कर लिए। अब ये व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हो, पागल आदमी, अरे इसको बचा रहा हूं। तो उसने कहा दो, अपना हाथ दो, तो उसने हाथ पीछे। तो उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा था जो जानता था, बोला भैया ये बड़ा कंजूस आदमी है, इसको देने को मत बोलो, बोलो मेरा हाथ लो। उसने कहा अच्छा हाँ। उसने कहा लो लो मेरा हाथ लो, जैसे ही कहा उसने पकड़ लिया। तो ऐसे कंजूस व्यक्ति होते हैं जो देना, मृत्यु के समय भी देना नहीं जानते, छोड़ेंगे नहीं, देंगे नहीं। तो कृपणो समोदानी न भूतो न भविष्यति, ऐसे कंजूस नहीं होना चाहिए। वैसे शास्त्रों में ये शब्द कृपण और ब्राह्मण ये उन व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो मनुष्य जीवन होते हुए भी सारी सुविधा होते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं करते, शास्त्रों में उनको भी कृपण कहा गया। क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें सुविधा है, समय है, योग्यता क्षमता है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो अगर मनुष्य शरीर होकर भी कोई भगवान की भक्ति नहीं करता तो वो केवल कृपण है, कंजूस है, जो चीज है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। दूसरी ओर ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो मनुष्य शरीर लेकर भगवान की भक्ति में लगता है। तो ऐसे नारद मुनि ने धन का बहुत वर्णन किया। चाणक्य पंडित कहते हैं कि धन ये एक ऐसी चीज है कि जब आता है तो भी दुख, अये दुखम गए दुखम। आता है तो बड़ा दुख होता है, कितना कष्ट करना पड़ता है धन कमाने के लिए, सरलता से तो नहीं आता है, कई कई घंटे परिवार का ध्यान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तो अये दुखम गए। और जब जाता है तो और दुख होता है ना, जब पैसा चला जाता है तो व्यक्ति को बहुत दुख होता है। तो ऐसा है ये धन, आता है दुख देता है, जाता है दुख देता है, जब रहता है तो भी व्यक्ति चिंता में रहता है कहीं चला नहीं जाए, छुपा छुपा के रखते हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाते हैं, बेडरूम में, नीचे बाथरूम में, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा छुपा के रखते हैं कि कहीं चला नहीं जाए, जाना है तो फिर भी चला जाता है ना। तो जब नारद मुनि ने ऐसे अब उनको कहा कि अब मुझे, मैं एक श्राप देता हूं इनको, क्योंकि इनको सुधरना है, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये ऐसे खड़े हैं नग्न, इनको शौक है अपने शरीर दिखाने का, तो इसीलिए मैं इनको श्राप देता हूं कि अब ये अभी नीचे जाकर दोनों पेड़ बन जाएं। देखिए शास्त्रों में कर्मों का नियम है, और कर्मों का नियम क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, कुछ कुछ उदाहरण देते हैं आपको, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, जानते हैं खाने में आसक्त है, हर समय खाता रहता है, मतलब कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, वो कहते हैं कि क्या फायदा, मतलब वो कहते हैं कि हमारी उंगलियां सूखनी नहीं चाहिए, सूखने से पहले कुछ और आ जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में कहा गया है कि वो अगले जन्म में भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान कहते हैं इस मनुष्य जीवन में इतना खाना ठीक नहीं है, हर समय खाने की इच्छा, तो एक काम करो अगले जन्म में सुअर बन जाओ। तो व्यक्ति अगले जन्म में सुअर बनता है। सुअर आप जानते हैं हमेशा खाने का ढूंढता रहता है, देखिए उसका मुंह ऐसे नीचे रहता है, हमेशा मुंह नीचे करके वो ढूंढता रहता है कहां मिलेगा, कहां मिलेगा खाने के लिए बस। और खाता भी क्या ये आप सब जानते हैं। अभी हम वृंदावन गए थे तो हम जहां से जा रहे थे तो सुबह का समय था और एक सुअर अपना भोजन खा रहा था, जो वो खा रहा है तो हमें देखकर ऐसा हो गया कि बस उल्टी आने की कमी, लेकिन वो खाते हैं उसको, उनको बड़ा आनंद आ रहा था खाने में। तो सुअर बन जाओ, खाते रहो दिन भर, क्योंकि सुअर कभी और कुछ नहीं सोचता, जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं सोचता, धन कमाने के बारे में नहीं सोचता। या फिर किसी व्यक्ति को सोने में बड़ी आसक्ति है, सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना मतलब स्लीपिंग, हर समय सोते रहते हैं, जहां देखिए वहां सो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान अगले जन्म में पोलार बेयर बनाते हैं, ध्रुवीय भालू। पोलार बेयर आप जानते हैं हमारे पृथ्वी के दो पोल्स हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो वहां पर जो भालू होते हैं वो एक साथ 6 महीने तक सो सकते हैं, कुंभकर्ण के वंशज हैं शायद, तो एक साथ 6 महीने तक सो सकते हैं। तो भगवान जो बहुत सोने में आ सकते हैं उनको अगले जन्म में भालू बना लेते हैं, सो कोई चिंता नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में कितना सो सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, कोई महारथी होगा 3 दिन सो जाएगा, और तो ज्यादा नहीं सो सकते। और अगर कोई मांस खाने में बड़ा आसक्त है, जैसे कई कई लोग गर्व लेते हैं ये कहने में, एक बार हमारे एक मित्र थे बहुत साल पहले, वो अपनी छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची की, और हमें अभी भी ध्यान है, दिखाते हुए बड़े गर्व से कहते थे मेरी बच्ची तो बिना मछली के खाना ही नहीं खाती है, 3 साल की बच्ची, ऐसा क्या हो गया उसको कि बिना मछली के खाना नहीं खाती, क्योंकि आपने खिलाया। तो कई लोग होते हैं जो गर्व लेते हैं, तो बहुत ज्यादा जो मांसाहार करते हैं उनको अगले जन्म में भगवान शेर बना देते हैं, क्योंकि शेर कितना अच्छा जीवन है ना, खरीदना नहीं पड़ता, मसाला लगाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, पकाना नहीं पड़ता। देखिए ये प्रमाण है कि ये जो मांस है ये मनुष्यों के लिए नहीं बना, पशुओं के लिए बना है, क्योंकि मांस को ऐसे खा नहीं सकता मनुष्य, इसलिए पका कर खा लेता है उसको, कुछ भी हो लेकिन खाना। लेकिन जो जानवर है वो ऐसे ही खा लेता, तो उसको अगले जन्म में शेर बनाते हैं कि तुम जाओ, कोई खरीदने की जरूरत नहीं, मसाला लगाने की जरूरत नहीं, पकाने की जरूरत नहीं, पैसा कमाने की जरूरत नहीं, सीधे अटैक करो और खा लो। ऐसे बहुत भगवान। और जो लोगों को, जैसे यहां पर वर्णन है पेड़ों का, तो जिन लोगों को अपना शरीर का प्रदर्शन करने का बहुत शौक है, आप जानते हैं ना मिस्टर इंडिया और पता नहीं क्या कर, मिस इंडिया बनते रहते, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सब मिस होता रहता है उनके। तो मिस या मिस्टर इंडिया जो भी बनते हैं वो अपने शरीर का, जो मिस्टर इंडिया होते हैं वो पता नहीं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरसेप्स, कितने सारे वो शरीर बनाते रहते हैं, पता नहीं कैसा उनका शरीर, लोगों को अच्छा कैसे लगता है। हमने एक बार किसी का देखा था तो इतना वो बुरा लग रहा था, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा मतलब उनके लिए वो अच्छा था, अभी हम तो हमारी दृष्टि से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनके लिए तो वो बहुत अच्छा। तो वो जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अंग प्रदर्शन करते हैं, तो अगले जन्म में उनको पेड़ बना दिया जाता है, खड़े रहो ऐसे ही, जितना प्रदर्शन करना है करो, कोई चिंता नहीं, कोई रोकेगा नहीं, पेड़ बन जाओ। और आजकल का जैसा समय है तो हम आशा कर सकते हैं कि आगे चलकर बहुत सारे पेड़ पृथ्वी पर होंगे। तो ऐसे ही नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ पेड़ बन जाओ, लेकिन क्योंकि ये भक्त का श्राप है तो नारद मुनि ने कहा नंद महाराज के घर में जाकर पेड़ बनना, वृंदावन में नंद महाराज के आंगन में ये दोनों पेड़ बने जाकर। और फिर नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया कि आज से कई वर्षों के बाद स्वयं श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन देंगे। तो देखिए ये भक्तों का श्राप है, अगर भक्त श्राप भी देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही होता। तो ऐसे नारद मुनि ने श्राप दिया और फिर नलकुवर और मणिग्रीव ये दोनों वृक्ष बन गए, और यही दो वृक्ष थे जिन्हें अब कृष्ण देख रहे हैं, और अब कृष्ण उनका उद्धार करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण ने कैसे उनका उद्धार किया, खुद तो बंधे हुए हैं, खुद बंधे हुए हैं लेकिन उनको मुक्त करने जा रहे हैं, तो कैसे उन्होंने उद्धार किया इसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इस कथा को सुनने आ रहे हैं। कल तीसरा और अंतिम दिवस है, आपसे प्रार्थना है समय पर आए ताकि कल कथा को कह सकें। और कल हम एक विशेष भजन गाएंगे जो इस दामोदर महीने में गाना अच्छा होगा, जिसको गोविंद दामोदर स्तोत्र कहते हैं, बहुत सुंदर भजन है, उसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है, तो उसको हम लोग सब गा सकते हैं, बड़ा सरल भजन है, तो कल उसको गाने वाले हैं। तो आप सब कृपया कल आइएगा, और साथ ही साथ ये जो दो दिन का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर व्यवस्थापन बहुत अच्छी तरह से किया गया है, हम आभारी हैं। कल आखिरी दिवस है, कल चर्चा करेंगे कृष्ण ने कैसे उद्धार किया, और उससे महत्वपूर्ण कि इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए। तो आप सबसे विनती है आप कल आइएगा। वैसे हमारे संस्था इस्कॉन की तरफ से हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि ऐसे अवसर आप सबको प्रदान करते रहें। अरगा में तो यहाँ साल में एक ही बार आ रहे हैं, लेकिन अभी अगले महीने दिसंबर में 12 तारीख को, 12 दिसंबर जो सेकंड सैटरडे है, हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कर रहे हैं। कारवार के सड़कों पर से भगवान रथ पर सवार होकर निकलेंगे, और फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर बीच है वहाँ पर जाएंगे, भगवान दो दिन वहाँ रहेंगे, और वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होगा। कई वरिष्ठ सन्यासी इस्कॉन के इस उत्सव के लिए आ रहे हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव, ड्रामा होगा, बच्चों का कुछ कार्यक्रम होगा और प्रवचन होंगे। तो आप सबसे विनती है कि आप सब इस डेट को अपने अपने कैलेंडर में, अपने बुक्स में, या सबसे अच्छा है कि जहाँ शीशा हो वहाँ पर लगा के रख दीजिए, क्योंकि वो एक स्थान है जहाँ आप हर निश्चित जाते, भूलते नहीं। तो शीशे पर लगा दीजिए कि 12 दिसंबर को सेकंड सैटरडे दोपहर 3 बजे आपको हबुवाड़ा कारवार इस्कॉन मंदिर में आना है, ताकि भगवान को रथ में खींच कर ले जाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भगवान के रथ की रस्सी खींच लेता है तो मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है अर्थात मुक्ति के पथ पर चल जाता, शुद्ध हो जाता। और ये बड़ा अच्छा अवसर है, भगवान खुद बैठे हैं और उनको हम प्रेम से रस्सी से खींच कर लेकर जाएंगे। तो आप सबके लिए अवसर होगा, तो आप 12 तारीख को भी वहाँ आइएगा। और कल यहाँ पर हम लोग अंतिम दिवस इस कथा का चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान ने उद्धार किया इन दो वृक्षों का। तो आप सबसे विनती है कि आप सब आइएगा। और अभी हम लोग दामोदर अष्टकम को गाएंगे जैसे कल हमने गाया था, और उसके बाद आप सबके लिए अवसर होगा दीप दान का। तो आज दीप आप सब नीचे से ही दीप दान कीजिएगा, क्योंकि ऊपर जगह कम है, सब लोग आ नहीं पाते हैं, तो नीचे से ही दीप दान होगा। आपको दो तरफ दीप लगे होंगे, तो इस तरफ जो पुरुष हैं, जो प्रभु जी हैं, वो लोग आकर ले सकेंगे, और इस तरफ माताएं, यहाँ से महिलाएं इस तरफ आकर ले लेंगे। और आप दोनों नीचे से ही प्रभुपाद जी को और भगवान को वो दीप अर्पण कर सकेंगे। तो ये दीप अर्पण, जैसे हमने कल बताया था, कार्तिक का महीना है, बहुत आवश्यक है, बिना दीप अर्पण किए मत जाइएगा। तो दीप अर्पण कीजिए भगवान को, दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए और फिर भगवान का प्रसाद स्वीकार कीजिएगा। तो अब इस दामोदर अष्टकम को गाएंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं श्वासकं पात्रिलेखकं भक्तिदत्तम्
ందకుందే पूर्णनाथ गोपाल बालम नम
ಪ್ರಭೋ ದುಃಖ ಜಲಧಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಾತಿ ದೀನಂಬಕಾನು ದೇಹಾನೇಶ ಮಾಮಾದ್ಯ ಮೇ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟ ಇಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಾತಿ ದೀನಂಬಕಾನು ಿಹಾನೇಶ ಮಾಮಾದ್ಯ ಮೇ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟ ಕುಬೇರಾತ್ಮಜೋ ಬದ್ಧ ಸರ್ವಲಬ್ಧ ತ್ವಯಾ ಮುಚಿತೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾಜ ಕೃತೋ ಚ ಆತ್ಮಜೋ ಬದ್ಧ ಸರ್ವಯಾಮೋಚಿ ತೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾಜ ಕೃತ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸಕಾಮ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಗ್ರಹೋ ಮೇ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
छोटा वाला होता है और वो बड़ा वाला।